Surgióme.
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में उभरते पूर्वोत्तर भारत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप फूकन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 का आयोजन हो रहा है। 25 और 26 फरवरी को 2 दिन तक ये सम्मेलन चलेगा। समिट में बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन शामिल हुए हैं, ग्लोबल लीडर्स और इन्वेस्टमेंट फील्ड से जुड़े हुए लोग, पॉलिसी मेकर्स और उद्योग जगत से जुड़े लोग, स्टार्टअप्स और विद्यार्थी भी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में आर्थिक दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस समिट का उद्घाटन किया और एक विस्तृत संबोधन भी दिया। तो इस समिट के उपलक्ष्य में हमारे संवाददाता ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है, आइए सुनते हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि असम अब असीमित संभावनाओं का केंद्र और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत का प्रवेश द्वार है। असम पूर्वी भारत का विनिर्माण केंद्र होगा और उद्योगपतियों से इस रणनीतिक स्थानों का लाभ उठाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि उनकी सरकार कनेक्टिविटी के बुनियादी ढांचे में सुधार और इस क्षेत्रों में स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर भी काम कर रही है। आज इस अवसर पर कोई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आमिनुल हक जत्तार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
इस सम्मेलन और साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में क्या निवेश और आर्थिक विकास की संभावनाएं हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप फूकन। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
संदीप जी, सवाल से पहले मैं प्रधानमंत्री के संबोधन का एक छोटा सा अंश सुनवाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह से व्यापार को सुगम बनाते हुए और व्यापार के लिए एक देश में माहौल क्रिएट करते हुए, उद्योग जगत के लिए एक इंसेंटिव की सुविधाएं देते हुए सरकार ने प्रयास किए, जिससे कि इन्वेस्टमेंट और उद्योग और व्यापार में कई संभावनाएं खुल रही हैं, और खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों और असम के लिए भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो आइए एक प्रधानमंत्री के संबोधन से अंश सुनते हैं, उसके चर्चा जारी करते हैं।
आज भारत में इकोनॉमी के हर सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए निरंतर काम किया। हमने इंडस्ट्री और इनोवेशन कल्चर को बढ़ावा देने का पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है। स्टार्टअप के लिए नीतियां हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम्स हो, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और एमएसएमई को टैक्स में छूट देना हो, हमने हर एक के लिए बेहतरीन पॉलिसीज बनाई है।
संदीप जी, पहला मूल सवाल आपसे यही कि आर्थिक दृष्टि से पूर्वोत्तर राज्यों को किस तरह से सरकार देख रही है, और जिस तरह से ये समिट 2 दिन का है, इसका क्या एक सिंबॉलिक महत्व आप देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जैसा कि कहा कि बीते कुछ समय से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक संभावनाओं को बढ़ते हुए देखा गया है। उन्होंने आंकड़ा भी शेयर किया कि असम की अर्थव्यवस्था जो 2,75,000 करोड़ रुपए की थी, वो बढ़कर लगभग 6,00,000 करोड़ रुपए बीते कुछ ही साल में हुई है। तो इस तरह से कैसे हम पूर्वोत्तर राज्यों और असम की आर्थिक प्रगति को देख सकते हैं?
कमल जी, 2 चीजें हैं इसमें। अगर आप पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली लोग क्या बात करते हैं कि एक तो बहुत ही सुंदर इलाका है, जिसे नेचुरल ब्यूटी हम कहते हैं, कि बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं, पहाड़, ब्रह्मपुत्र नदी, झरने, और जिसे प्रिस्टीन ब्यूटी बोलते हैं, बिल्कुल अनटच्ड। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा पहलू ये भी था कि इसमें काफी सारे हिंसात्मक घटना और अंडरग्राउंड मिलिटेंसी ये सब भी था। तो इस परिपेक्ष में उससे निकाल के गवर्नेंस पे फोकस करके फिर आप इन्वेस्टमेंट समिट कंडक्ट करना, और इतनी बड़ी स्केल में, ये एक काफी काबिले तारीफ कदम है सरकार का। और जैसे कि आपने कहा कि असम सबसे पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य है, तो नॉर्थ ईस्ट जो है ये गेटवे है, एक द्वार है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। तो ये प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में ये दोहराया, स्ट्रेटेजिकली बहुत लोकेटेड है। हम 3 जो हमारे नेबर्स हैं, ऊपर में चाइना है, इधर बर्मा या म्यांमार है, और नीचे बांग्लादेश, तो स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सरकार चाह रही है कि एक पुश दिया जाए। 2 कारण हैं। एक तो नौकरी की सृजन होगी, और इन्वेस्टमेंट अगर वहाँ होती है तो नौकरी की सृजन होती है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लाइफस्टाइल मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बदलेगा, वो सुधार होगा, लोग खुशहाल होंगे। आज जैसे प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा कि ये अनिश्चितता की काल है, लेकिन इस काल में एक ही चीज निश्चित है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी बढ़ोतरी जरूर होगी।
और अगर हम देखें पूर्वोत्तर राज्यों में तो कई स्तरों पर व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए संभावनाएं खोली जा रही हैं। जैसे एक तरफ हम देख रहे हैं कि दूसरे राज्यों में जाकर पूर्वोत्तर राज्यों के रोड शो और इन्वेस्टर समिट आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे पिछले दिनों चेन्नई में पूर्वोत्तर व्यापार एवं निवेश रोड शो का आयोजन हुआ, और पहले भी इसी श्रृंखला में कई आयोजन हुए हैं। दूसरी तरफ बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश और व्यापार बढ़े इसके लिए और उद्योग बढ़े इसके लिए जल मार्ग, रेल मार्ग और जो सड़क मार्ग है, हर तरह से हवाई मार्ग है, हर तरह से कनेक्टिविटी को दुरुस्त किया जा रहा है। तीसरा एक स्तर कि जो असम के युवा हैं उनको कुशल बनाने की ओर प्रयास है, रोजगार के वो अवसर ढूंढ सकें, स्टार्टअप स्थापित कर सकें, एक स्किलफुल वहां पर हम देखें तो एक जनरेशन तैयार करने की कोशिश है। तो इन तीनों स्तरों पर जब एक क्षेत्र का विकास होता है तो कैसे आने वाले समय में आप बढ़ती हुई निवेश या व्यापार की या उद्योग की संभावनाएं देखते हैं एक क्षेत्र में, खासतौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के नजरिए से आप इसको कैसे देखेंगे?
आज प्रधानमंत्री ने भी इसके जिक्र किया कि डायनामिक वर्कफोर्स है और असम एक ग्रोथ इंजन हो सकता है। वर्कफोर्स है, काफी युवा बहुत है, शिक्षित भी है, लेकिन उनको स्किल ट्रेनिंग चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, मौका चाहिए। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक कनेक्टिविटी का इश्यू था, सड़कें इतनी ठीक नहीं थी, और उत्तर पूर्वोत्तर के कई राज्य ऐसे हैं जो कमल जी पहाड़ी इलाकों में हैं, दुर्गम परिस्थिति में जाना पड़ता है, मतलब थोड़ा दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं कुछ कुछ जगहों पे, तो वहां पे वेदर डिपेंडेंट भी है कि अगर बहुत वर्षा के दिनों में लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, कनेक्टिविटी कट हो सकती है, जो ऑल वेदर रोड्स मिलना भी मुश्किल होता है कई बार। तो इसी के चलते पहला फोकस है कि आप ऑल वेदर रोड्स बनाओ, हवाई कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी जहां संभव हो पहले इसको तैयार करो, उसके बाद आप निवेश के लिए निवेशकों को बुलाओ
जी।
तो वो असम में हालांकि बहुत समतल जमीन बहुत है और यहाँ परिस्थिति थोड़ा अलग है, यहाँ पे आपको ज्यादा आसान होगा, और इसी कारण से इन्होंने कोशिश किया है कि जो स्किल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री और स्किल, मतलब जैसे ही इंडस्ट्री सेटअप होंगे तो उसी से स्किल डेवलपमेंट भी होगा, नहीं तो जो पूरे उत्तर पूर्वोत्तर के जो बच्चे हैं वो काफी जाने जाते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो मौका उनको अपनी जगह में नहीं मिलता। वो कई लोग, हम लोग सब बाहर नौकरी ढूंढने के लिए बाहर आते हैं, तो उस परिपेक्ष से भी आप देखें तो कोशिश रहेगी कि जो बच्चे जो वहां के हैं वहीं पे रहे। अभी असम में आपको मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर का प्लांट जागी रोड, गुवाहाटी से बस महज एक घंटे भी नहीं है, 40-45 मिनट का सफर है, उतनी दूरी पे एक जागी रोड जगह है, वहाँ पे सेमीकंडक्टर का एक प्लांट बना रही है।
और प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि सेमीकंडक्टर की जो उसका उत्पादन है उसको लेकर किस तरह से असम और पूर्वोत्तर भारत के राज्य एक बहुत बड़ा हब बन सकते हैं और कितनी क्षमता है, इस क्षमता को भी निकालने की आवश्यकता है, तो इस पर भी काफी बात हुई आज।
जी जी, वो टाटा ग्रुप का ये पहल है और ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद इस साल के अंत तक वो प्लांट फंक्शनल हो जाए, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कमल जी। और दूसरा ये कि हमारे जानने वाले भी लोग जो बाहर बैंगलोर में काम करते थे, हैदराबाद में काम करते थे, अब वापस अपने स्टेट में चले गए हैं अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए कि अपने तरीके से मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो वो भी होगा, कुछ लोग वापस आएंगे, कुछ लोग तो पलायन भी कम होगा, अगर देखिए उद्योग
होगा, रोजगार होंगे, हाँ, तो निश्चित तौर पर वो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।
बिल्कुल बिल्कुल, और रोजगार की संभावना या रोजगार की सृजन जैसे ही होगा तो पलायन कम हो जाएगा, और लोग नहीं चाहेंगे कि हम दूर के इलाकों में या ट्रैवल करके कहीं अलग जगहों पर रहें, अपनी जगह पर रहना पसंद करेंगे।
जी बिल्कुल, असम एडवांटेज 2.0 में बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, बहुत सारे उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, तो कुछ हम आपको बातचीत सुनवाते हैं। हमारे संवाददाता ने कुछ लोगों से वहां बातचीत की। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश के एक उद्योगपति जो असम में पहुंचे और किस तरह से निवेश के लिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए संभावनाएं ढूंढी, उनसे की गई बातचीत आपको सुनवाते हैं।
हम लोग असम एडवांटेज 2 पे आए एंड पहले हम लोग हैदराबाद में मिले थे असम गवर्नमेंट के तरफ एंड वी हैव गिव आवर इंटरेस्टेड यू नो वी हैव गिव अ इंटेंट टू शो दैट हाउ दिस इज गोइंग टू बी डन बट लेटर ऑन वंस वी हैव सीन द रिसेप्शन ऑफ द असम गवर्नमेंट यू नो वी आर वेरी मच एक्साइटेड एंड हम लोग अभी हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है 6,500 इन टू फेजेस। फर्स्ट वन इज 3,000 करोड़, सेकेंड वन इज 3,500 करोड़। सो ये पूरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा नियरली यू नो अप्रॉक्सिमेटली ऑन एन एवरेज 10,000 पीपल के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हम लोग अभी पूरे पेपर एंड पल्प मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हम लोग एक कोजन पावर प्लांट भी यहाँ पे डेवलप करेंगे, उसके हिसाब से विल जनरेट लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो।
अगर ऊर्जा की भी बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में भी बहुत बड़ा सोर्स पूर्वोत्तर भारत और असम में है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा कि भारत के कुल ऑनशोर प्राकृतिक गैस उत्पादन का 50% योगदान असम देता है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य की जो रिफाइनरीज हैं उनकी क्षमता में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। तो ऊर्जा क्षेत्र में भी हम देखें तो हरित ऊर्जा के मामले में भी पूर्वोत्तर भारत और असम एक बहुत बड़ा क्षेत्र निकलकर सामने आ रहा है। जैसे हाइड्रोकार्बन भंडार हुआ या जो जल विद्युत उत्पादन हुआ, इस मामले में भी इस क्षेत्र को देखा जा सकता है। तो हम एक और आपको बातचीत सुनवाते हैं, टेरी के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर दीपांकर से हमारे संवाददाता ने बात की।
जो आज एमओयू हुआ है वो नॉन फाइनेंस वाला था, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ हुआ है, ये है फॉर ग्रीन बजटिंग, ग्रीन प्रोक्यूरमेंट और कार्बन फाइनेंस के लिए। तो इसमें जिसमें हम लोग गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को सहायता करेंगे ये ग्रीन प्रोक्यूरमेंट कैसे करें, फिर ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन बजटिंग और क्लाइमेट फाइनेंस। तो एक तो एमओयू वो था, दूसरा तीन जो और एमओयू थे वो थे माइक्रोराइजर जो एक बायोफर्टिलाइजर है और नैनो फर्टिलाइजर्स। तो तीन नैनो फर्टिलाइजर और एक बायो फर्टिलाइजर्स। तो ये तीनों ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर लिमिटेड के साथ हम लोग ये मार्केटिंग करेंगे और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके उनको और वो प्रोड्यूस करके फिर यहाँ नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट ऐसे ही हम लोग नेचुरल और बहुत ऑर्गेनिक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ अगर बायो फर्टिलाइजर भी हम लोग इस्तेमाल करें तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए टेरी सरकार के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये एमओयू साइन किया विद ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स के लिए।
इसी तरह से ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भी कई समझौता ज्ञापनों पर आज हस्ताक्षर किए हैं सरकार के साथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी रंजीत रथ के साथ भी हमारे संवाददाता ने बात की है, तो आइए इस बातचीत का भी एक अंश आपको सुनवाते हैं।
एडवांटेज असम 2.0 में हमने कुछ एमओयूज के पर स्वाक्षर किया। पहला ये है कि अगले 3 साल में करीब करीब 20,000 करोड़ का एक्सप्लोरेशन के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर हमारा खर्चा रहेगा और ये इन्वेस्टमेंट अपर असम और ऑयल इंडिया के जो मेन प्रोड्यूसिंग एरियाज है डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स में, उसी में ये लागत लगेगी और नॉर्थ बैंक में भी हमारी इसमें भी वो लागत लगेगी। दूसरा हमने एक एमओयू साइन किया जिसमें असम में हम लोग 4 या 5 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगा रहे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की क्लैरियन कॉल और स्वच्छ भारत मिशन के तहत। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से नेचुरल गैस बनाने का तरीका है कंप्रेस बायोगैस प्लांट। तो एक तिनसुकिया में लग रहा है जिसके लिए टेंडर अभी ऑन है, एक जोरहाट में लगाने की प्रयास है, एक गुवाहाटी में लगाने की प्रयास है और एक शिवसागर में लगाने की प्रयास है। इसको छोड़ के असम पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ माननीय मुख्यमंत्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम उनकी दिशा निर्देश में हमने एक पायलट प्लांट बनाने जा रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर और एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पायलट प्लांट बनाएंगे वो असम पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर।
तो संदीप जी, हमने कई लोगों की बातचीत सुनी, इन क्षेत्रों की क्षमता को कैसे देखा जा सकता है पूर्वोत्तर राज्यों में और कैसे अगर इन क्षमता का हम पूरा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में हम इस क्षेत्र से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।
जो सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट हो तो मेरे ख्याल से स्टेट के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और उन्हीं के अगर दावा सही है तो लगभग 10,000 नौकरियों की सृजन होगी, और उनको पावर की भी कोई दिक्कत नहीं होगी और रॉ मटेरियल की भी दिक्कत नहीं होगी। एक थोड़ा दूर है लेकिन वो कनेक्टिविटी अब बहुत मायने में इम्प्रूव हो गई है, और वो कोई भी हिस्सा आप दिल्ली से दूर नहीं।
जी बिल्कुल संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश और व्यापार की संभावनाओं के बारे में और असम एडवांटेज 2.0 के संबंध में जो सम्मेलन आयोजित हो रहा है इस पर आपने विस्तार से चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में उभरते पूर्वोत्तर भारत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार संदीप फूकन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।